आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा नया वेतन आयोग। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान प्रारंभ। 4 नवंबर से शुरू होगी गणना प्रक्रिया। 7 फरवरी 2026 को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। प्रदेश में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख अधिनियमों में व्यापक संशोधन। सजा का प्रावधान समाप्त, अब सिर्फ आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था। और चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण बदला प्रदेश के मौसम का मिजाज। तापमान में गिरावट के बीच आज भी बेमौसम बारिश की आशंका। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दे दी गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। उन्होंने बताया कि आयोग में एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य सचिव होंगे।
एक पे कमीशन को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। अब करीब करीब सभी राज्य सरकारों ने इसमें सहयोग दिया है। 18 मंथ्स के अंदर ये रिपोर्ट आएगी इसकी। एट पे कमीशन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को इसका चेयरपर्सन बनाया गया। आप सब पुलक घोष फ्रॉम एंड मिस्टर पंकज जैन हु इज सेक्रेटरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ही विल बी द मेंबर्स।
सरकार ने इस वर्ष जनवरी में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य लाभों में बदलावों की जांच तथा सिफारिश करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रवि सीजन 2025-26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने रवि सीजन 2025-26 के लिए लगभग 37,952 करोड़ रुपए की सब्सिडी को मंजूरी दी है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्णय के अनुसार दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अभियान की कल शुरुआत हो गई। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के अनुसार SIR के दूसरे चरण में 51 करोड़ मतदाता शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के 1,62,486 बूथों पर एक साथ ये पुनरीक्षण कार्य किया जा रहा है। गणना प्रपत्रों की छपाई और BLO के प्रशिक्षण कल से शुरू हो गया है। गणना प्रक्रिया 4 नवंबर से शुरू होगी। मसौदा मतदाता सूची 9 दिसंबर को और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी राजनीतिक दलों और मतदाताओं से अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की है। एक दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश में चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से संपन्न कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। ऐसे में एक संवैधानिक संस्था के रूप में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर चुनाव आयोग अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है।
स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू का जहां तक सवाल है, ये एक जरूरी औपचारिकता है कि हर राज्य के अंदर जो मतदाता इलेक्टोरल रोल है उसका रिवीजन हो। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो चुनाव आयोग को नहीं करना चाहिए। जो मतदाता मृतक हो चुके हैं या जिन मतदाताओं के नाम का ड्यूप्लीकेशन है, उसे हटाना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है।
प्रदेश सरकार ने कल IAS संवर्ग के 46 और PCS संवर्ग के 27 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसमें विंध्याचल, सहारनपुर और मेरठ मंडल के मंडलायुक्त और हाथरस, सीतापुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, कौशाम्बी, बलरामपुर, ललितपुर, श्रावस्ती तथा रामपुर के जिलाधिकारियों का भी तबादला शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश सरकार ने राज्य में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख अधिनियमों में अधिकांश आपराधिक प्रावधान समाप्त कर दिए हैं। नई व्यवस्था में सजा का प्रावधान समाप्त कर सिर्फ आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार प्रावधानों का संशोधन अध्यादेश 2025 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या महायोजना 2031 से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अयोध्या का विकास भव्यता, आस्था और आधुनिकता तीनों का समन्वित रूप होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या का विकास न केवल धार्मिक पर्यटन बल्कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी प्रेरक उदाहरण बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या केवल शहर नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतीक है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि अयोध्या विकास क्षेत्र में 159 निवेश परियोजनाएं स्वीकृत हैं, जिनमें 8,594 करोड़ रुपए का निवेश होने की संभावना है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना प्रस्तावित है। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज न केवल आस्था का प्रतीक होगा बल्कि श्रीराम जन्मभूमि निर्माण की पूर्णता का संदेश भी देगा। उन्होंने कहा कि ध्वज का भार करीब 11 किलो होगा, ऐसे में उसे फहराने के लिए सेना की मदद ली जा रही है।
जो पताका लहराया जाना है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक ऊंचाई पे जाएगा वो 11 फीट का है और 22 फीट की चौड़ाई इस प्रकार का पताका है। तो कल सेना के लोग आए थे और उन्होंने रिहर्सल किया, हम उनकी राय को पूरा पूरा क्रियान्वित करेंगे।
छठ महापर्व के संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों, बिहार और झारखंड से अन्य प्रदेशों को वापस जाने वाले यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा सुगम यात्रा के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उत्तर रेलवे और पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से बड़ी संख्या में पूजा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि आज गोरखपुर सहित विभिन्न स्टेशनों से 15 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। वस्तु और सेवा कर GST बचत उत्सव का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। स्टेशनरी के सामान पर GST दरों में कटौती से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
नए GST सुधारों के तहत सरकार ने स्टेशनरी की वस्तुओं पर महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। नए कर ढांचे के तहत पेंसिल, शार्पनर, क्रियॉन, अभ्यास पुस्तकें, ग्राफ बुक, मानचित्र और चार्ट पूरी तरह से करमुक्त कर दिए गए हैं। इन वस्तुओं पर पहले 12% GST लगता था। इसी प्रकार इरेजर जो पहले 5% टैक्स लाभ में आती थी उसे भी करमुक्त कर दिया गया है। इन सुधारों ने आवश्यक स्टेशनरी वस्तुओं को और अधिक किफायती बना दिया है, जिससे छात्रों के लिए सीखने की लागत कम हुई है और घरेलू निर्माताओं की बड़ी है। GST में कमी से न केवल शिक्षण उपकरण सस्ते हुए हैं बल्कि देश भर में शिक्षा तक पहुंच भी बढ़ी है। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कल कई जिलों में बारिश हुई तो आज भी राज्य के कई हिस्सों में तड़के से ही बादल छाए हुए हैं। इस बीच तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और तेज हवाओं के चलने से तापमान में और कमी आ सकती है। अगले 24 घंटे में गोरखपुर मंडल में मध्यम से भारी बारिश की आशंका जताई गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को दी मंजूरी। गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा नया वेतन आयोग। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान प्रारंभ। 4 नवंबर से शुरू होगी गणना प्रक्रिया। 7 फरवरी 2026 को होगा अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन। प्रदेश में उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 10 प्रमुख अधिनियमों में व्यापक संशोधन। सजा का प्रावधान समाप्त, अब सिर्फ आर्थिक दंड और प्रशासनिक कार्रवाई की व्यवस्था। और चक्रवाती तूफान मोन्था के कारण बदला प्रदेश के मौसम का मिजाज। तापमान में गिरावट के बीच आज भी बेमौसम बारिश की आशंका। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।